को बतलाया और कहीं भी भूल त्रुटि नहीं हुई है? और 15-16 वर्ष से है, आज तक इसका चित्त चंचल हमने कभी नहीं देखा। स्थिर चित्त से मटकी जोर से भागवती यह करता है। कभी चित्त हमारा चंचल हो गया मत छोड़ करके भागना, ये सब हमने नहीं देखा। इसलिए इसका जीवन सार्थक है जो वैष्णव की सेवा करके ऐसे ही तत्व आता है। एकांतिक अनुगत बिना पढ़ा लिखा हुआ भी व्यक्ति रहेगा, कुछ भी उसको नहीं ज्ञान है, तभी उसका चित्त चंचल है। और जब बड़े बड़े लोग समस्त शास्त्र पारंगत, वेद वेदांत पारंगत, और जो चित्त रोज ही चंचल होता है, उनका चित्त रोज उठक बैठक करता है, तो उसका क्या हुआ? इसलिए इस विषय में सब ठीक रखो। भक्ति स्वयं स्फूर्ति होने वाली भगवान की शक्ति है, लाडली और समृद्ध की सार देती है। वो किसी विद्या की किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखती। समस्त शास्त्र लोग कहते हैं जब इस प्रकार से वो भजन करता है गुरु के निर्देश में, सदगुरु के निर्देश में, उसके अनुगत्य में, सारी विद्याएं अपने आप इसमें स्फूर्ति पाती है। इसका विश्वास रखो और अपनी चेष्टा से करेगा, बिना अनुगत्य के लाख करते करते रक्त सत्य करके मर जाओ, कोटि जन्म करे जो दिन समान कीर्तन तब कना पाए कृष्ण पद प्रबंधन। इस चीज को अच्छी तरह से गांठ बांध लो। लाखों जगत को भ्रमण करके भी अपनी चेष्टा से, अपनी विद्या से, पांडित्य से, बुद्धि से, इसलिए मेरा निवेदन यह है आप लोग अपनी बुद्धि का कसरत करना छोड़िए। शुद्धानुगत में निष्कपट होकर के भगवान का भजन, भक्ति पर विश्वास रखिए। गुरु सेवा के लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत रहिए, जैसे कि हमारे प्राचीन काल से अब प्रस्तुत नरोत्तम ठाकुर बनिए, हमारे प्रभुपाद जी बनिए, जो कैसे उन्होंने किया रघुनाथ मंदिर के लिए, जो किशोर दास है निरक्षर व्यक्ति, कखा कखा नहीं पढ़ने वाले, वो भी अंधे, और वो उनको गुरु बनाना चाहते हैं और वो गुरु करण उनको दीक्षा नहीं दे रहे, और उन्होंने निष्कपट होकर के खाना पीना जब छोड़ दिया, भक्ति ठाकुर के कहने से उनको दीक्षा। उनका मन कभी खराब हुआ? कभी चित्त चंचल हुआ? उनको पूर्ण विश्वास है, निश्चय दृढ़ता है कि हम गुरु की सेवा से हम सर्वस्व हम प्राप्त कर लेंगे। हमने अपने जीवन में भी अनुभव किया इसको, इसलिए इस पर आप लोग विश्वास करते हैं। और जो चेष्टाएं करते रहे किंतु ये विश्वास करके गुरु सेवा के लिए अपना शरीर रखिए, वो जैसा कहता है उसे चलने की चेष्टा कीजिए, अपनी स्वतंत्रता मत रखिए। भजन में आकर के माता पिता भाई बंधु को, इसलिए इस सब विचारों को सुनिए। अभी हम कौन है? प्रेमानंद कहा है? वो आएगा, वो तो बहना बने। यदि प्रेमानंद यहाँ है तो 5 मिनट के लिए आ जाए और थोड़ा सा कृष्ण के चरणों में पुष्पांजलि दीजिए, और यदि बात नहीं मानेंगे तो वहीं पर रहिए। आ रहे हैं? हाँ आ जाइए, नहीं है तो तुम प्रस्तुत रहो, इसके बाद में तुम बोलोगे। सेवा करेंगे चित्त कभी चंचल नहीं होगा। चित्त चंचल हो गई तो वैष्णव से अनुष्ठान से चित्त चंचलता दूर हो जाती है। सदगुरु का मिलना बड़ा भारी कठिन है, सद वैष्णव का मिलना बड़ा भारी कठिन है। इसी जन्म में हमको हरि नाम कर करके भजन करके इस माया को पार करना है, इसलिए हम लोग भजन शिक्षा लेकर के इसी को प्रधानता रख करके और चीजों को गौण बनाते हुए हरि भजन में तत्पर हैं। हम लोगों ने
कृष्ण तत्व के संबंध में बहुत अमल हरि है, अमल कृष्ण। उसको बुखार हो गया क्या? हम लोग बार बार कहते हैं कि तुम लोग सामने बैठा करो, जब भी कुछ सीखना है तो भी बैठो, अभी दो मिनट में कह देता हूँ। उसके बाद हमने एक दिन कहा था कि कृष्ण के लिए लोग कुछ संदेह करते हैं कि कृष्ण को जब भी हम भगवान मानते हैं तो भगवान सत्य संकल्प होते हैं, जो कुछ संकल्प करेंगे जरूर हो जाएगा, इच्छा करने के मात्र से ही वो काम हो जाता है। तो कृष्ण ने इच्छा की, वो गए संधि कराने के लिए हस्तिनापुर में, और उनकी बात करों ने नहीं मानी और वो बैरन लौट आए और युद्ध हो गया, उसमें सबका सर्वनाश हो गया। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं उनकी इच्छा के प्रयुक्त गए, चेष्टा भी की और नहीं हुआ, तो ये तो भगवत्ता का लक्षण नहीं है। किंतु बात जैसा कि लोग सोचते हैं ऐसी नहीं है। क्यों? किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं, एक अंतरंग और दूसरा होता है बहिरंग। कृष्ण जब संधि कराने के लिए चले, संधि कराने के लिए क्या, जब जगत में उनका आविर्भाव हुआ तभी उन्होंने संकल्प कर लिया भक्ति विरोधी दैत्य दानियों को हमको संहार करके पृथ्वी का भार उतार करके धर्म की प्रतिष्ठा करना, ये संकल्प हुआ। इसलिए महाभारत का युद्ध होगा, असुरों का विनाश हम करेंगे, महाभारत का युद्ध होगा, साल्व और सब लोगों के साथ में उनका युद्ध, शिशुपाल इत्यादि का वध करने के लिए ही वो आए हैं, ये संकल्प उनका पहले से ही है। इसलिए जिस समय में वो जा रहे थे हस्तिनापुर, तो द्रौपदी से मिलने के लिए गए तो द्रौपदी रो उठी और बोली, मेरे सखा जब आप जा रहे हैं तो और इच्छा करके जा रहे हैं, ये सुलहनामा हो तो ये हो ही जाएगा, जरूर होगा, आप जब चाहते हैं आपके चाहने से ही हो जाए, फिर मेरा क्या होगा? हमने जो प्रतिज्ञा की है, भीम ने जो प्रतिज्ञा की है, ये सब प्रतिज्ञाओं का क्या होगा? मैंने प्रतिज्ञा की है ये दुष्ट दुशासन की भुजा उखाड़ कर उसके ताजे रक्त से अपने केस को बांधूंगी, नहीं तो हमारा केस खुला रहेगा। और भीम ने क्या प्रतिज्ञा की है? दुष्ट दुर्योधन का जंघा तोड़ूंगा। ऐसे ऐसे सब प्रतिज्ञाएं हैं, तो आप तो जा रहे हैं, ये कोई हम लोगों की प्रतिज्ञा नहीं रहेगी, महाभारत युद्ध नहीं होगा। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा संकल्प और मेरा संकल्प ठीक है, उनसे अकेले में गोपनीय रूप में कह रहा हूं, ये महाभारत युद्ध होगा, हम ऊपर से बहिरंग रूप में जगत को साधारण लोगों को जो धर्म के गंभीर विषय जो नहीं जानते हैं ऐसे लोगों को संतुष्ट रखने के लिए, उनकी प्रतीति के लिए मैं जा रहा हूँ, असल में मैं युद्ध बंद करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, युद्ध आरंभ कराने के लिए जा रहा हूँ, युद्ध जरूर होगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा जरूर है, कभी दूसरों को मत बतलाना, तुम समझ रखो। इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ, जब नहीं होता तो धर्म की रक्षा नहीं होती। क्यों? जितने दुष्ट असुर थे शरीर को मैं मानकर और उसी में आसक्त रहकर शरीर के सुख के लिए सब कुछ करते थे, यहां तक कि दूसरों के प्रति अत्याचार अनाचार करते थे। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक सत्य धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी, विशेष करके आत्मधर्म की नहीं होगी और प्रेम धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसलिए ऐसे असुरों का विनाश आवश्यक है, इसलिए इनको तो मरवाया ही। द्वारकापुरी में भी जो लोग धर्म विरोधी थे वहां से रह करके असुरों का विनाश किया। वहीं से आकर के उन्होंने दंत बकरी इत्यादि का, साल्व का, पौंडिक वासुदेव का, मैदानों के कौन दानों का, कालजवन के लाखों करोड़ों असुर सेना को, जरासंध के 18,000 करोड़ों करोड़ों की, महाभारत जैसा वो पूरा सैन्य लेकर के आता था और उसका एक भी आदमी नहीं बचता था, केवल वही वो बचता था। इसलिए 18 बार ध्वंस किया। इसलिए जब तक ये अशुभ लोग रहेंगे, इस आत्मधर्म की, प्रेम धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी। यही इनका सच्चा संकल्प था। इसलिए इसमें कहीं भी संदेह न हो जो कृष्ण की ये बात झूठी, ये सत्य संकल्प नहीं थे। दूसरी बात, एक और क्या मैंने कहा था, जयद्रथ के वध के समय और कर्ण के वध के समय, द्रोणाचार्य के वध के समय कृष्ण ने धोखा दिया लोगों को और झूठ बुलवाया। द्रोणाचार्य के वध के समय में क्या हुआ, अश्वत्थामा हतः इति जोर पूर्वक युधिष्ठिर जी से कहलवाया और वह नहीं माने तो कहा जो जैसा तुम्हारी इच्छा है वही कहो। देखो ये हाथी मारा गया अश्वत्थामा नाम का, भीम को कहा अभी मारो और मारा। खान का एक हाथी को मरवाया और उनसे कहा कि अब कहो जैसे मारा गया, तो हम ये नहीं कहेंगे अश्वत्थामा मारा, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मारा गया, ये कहेंगे। तो जो भी इच्छा उसे कह दे, कृष्ण की पूरी बात नहीं मानी। कृष्ण गुरु हैं, उनकी भी बात को आज भी मानने से उनकी क्या दशा होगी। जब ये आगे बात कही यह अश्वत्थामा मारा गया और किंतु कुंजो नरो बा, यहां ये कहा बस। उसी समय में पंचजन्य शंख बजाया और अर्जुन इत्यादि ने शंख बजाया, शंख की आवाज में उनका बोलना वो नहीं सुनाई पड़ा और वो द्रोणाचार्य ने उन्होंने समाधि लगाई और आत्मा को निकाल दिया। तो इसमें मालूम होता है जो कृष्ण ने झूठ बुलवाया और असत्य कार्य कराया, ऐसा मत समझना। क्यों, द्रोणाचार्य भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, ज्ञान बूझ करके कृष्ण की इच्छा की पूर्ति के लिए दुर्योधन का पक्ष लिया था। ये और भी संपितामा जी ये तत्वज्ञ लोग थे। यदि ये लोग दुर्योधन के पक्ष से खड़े नहीं होते तो ये सारे दुष्ट मरते नहीं। उन्हें निर्भर करके दुर्योधन ने युद्ध किया था, इसलिए वो यदि नहीं होते तब आज युद्ध नहीं होता। इसलिए कृष्ण की इच्छा के लिए इन लोगों ने उनके तरफ से लड़ा, इसलिए कृष्ण महात्मा है। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बड़े कर्तव्य वैष्णव हैं, उत्तम अधिकारी हैं। अर्जुन की शब्द में अंदर से चाहते थे कि अर्जुन की विजय हो, उनको वरदान दिया इसके लिए। इसलिए कृष्ण की यदि किसी को धोखा देना नहीं, क्यों, अर्जुन के मुख में इन्होंने अपने मुख में विश्व रूप में उन्होंने दिखलाया द्रोणाचार्य अश्वत्थामा, ये कृपाचार्य जैसे लोग हैं जो मरने वाले नहीं हैं, अमर हैं। विषम पिता मिता जी सब मरे हुए पड़े हुए हैं, कोई भी जीवित नहीं, उनके दांतों तले में सब मुख में चले जा रहे हैं, सबको मरा हुआ देखा। इसलिए कहा जो ये तो मरे हुए हैं, अब निमित्त मत बन जाओ। इसलिए अश्वत्थामा मारा गया है, ये झूठ बात नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज जी को ये समझ में नहीं आई, कृष्ण ने योग माया के द्वारा उनके ज्ञान को आच्छादन कर दिया और दिखलाया कि इसकी भयानक परिणति होगी। उनका रथ आकाश नीचे उतरा और नरक भी देखना पड़ा। कृष्ण की बात मानी किंतु आदि अर्ध को कुटिल न्याय मानी, पूरी नहीं मानी, इसलिए उनकी ये दशा हुई। इसलिए गुरु के बात में कभी विश्वास मत करो। जब कृष्ण जैसे सदगुरु हो, हम लोगों के वैष्णव आचार्य जो महापुरुष से लेकर के प्रभुपाद और हमारे गुरुपाद पद में किसी की बात में कनिक भी मत संदेह में संदेह करो। श्रीमद्भागवत और गीता के सिद्धांतों में किसी प्रकार का मत रखो संदेह। आंख बंद करके इस पर चलते हैं कि इसी को भागवत धर्म कहते हैं। उसमें तेजी से दौड़ो या पैर भी कहीं उल्टा सीटा भी गिर गया तो आदमी वो गिर नहीं सकता है। यदि एक क्रम को छोड़कर के पैर दूसरी जगह भी चला जाए, भवन मिलिंद मित्र, मिलिंद मित्र मैंने क्या आंख बंद करके, मैंने क्या आंख बंद करने का तात्पर्य क्या, एक स्टेप की भक्ति के एक रंग की उपेक्षा भी कर करके यदि कोई नाम संकीर्तन कर रहा है वो अर्चन नहीं करता, ये उपेक्षा हुई, उसको उल्लंघन करके भी आगे चला जाता है, ये पतित नहीं होता। भक्ति के 64 अंग है, उसमें से किसी अंग को वो छोड़ देता है जो भक्ति भावमय होता है, भाव संबंधी होता है, उसको वो ग्रहण करते हैं और तो वो छोड़ देते हैं। इसे कोई कोई हरिदास ठाकुर अर्चन करते हुए नहीं सुना गया, हरिकथा प्रवचन करते हुए नहीं सुना गया, किंतु सब तत्वों को जानने वाले हैं। हरि नाम करने से तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ने प्राध नाम ले पाए त्रिमदन, एक कृष्ण नाम की इतनी महिमा है। किंतु यदि अपराध उठे हस्ति माता, ऐसे जो प्रभावशाली नाम है, यदि अपराध हुआ अनर्थ रहा तो जितना भी मन से तुम निष्ठा करके चलो मन चंचल रहेगा, इसलिए इन सब चीजों को विचार करना चाहिए। इसलिए ऐसे हम लोगों को चलना है जैसे किसी चीज स्थिर रख करके हम एकनिष्ठ रूप में भजन कर सकें और इसी जन्म में ही अनर्थों को दूर करके संबंध ज्ञान के साथ बड़े प्रेम के साथ में हरिनाम करते हुए हम भजन में अग्रसर हो। ऐसे गुरु को ही हमको ग्रहण करना है, हमको ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है जो वैभव में डूबे हुए हैं, धन्य करने का समय नहीं, अवकाश नहीं, एक माला धारण करने के भी अवकाश नहीं है, गुरु मंत्र करने का भी अवकाश नहीं है चित्त को स्थिर करके, उससे क्या होने को है। इसलिए शुद्ध गुरु का आश्रय करके उसके इच्छा में इच्छा मिला के उसके अनुगत्य में स्थिर चित्त से भजन यदि करें हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं सब ऐसी ही है, गुरु गुरु में गए किंतु उनकी पत्नी के आदेश को कैसे पालन किया भगवान होकर के, उनकी सब लीलाएं बड़ी गंभीर है। इसको जितना ही विचार करें विचार कर ले चित्ते आदेश समझदार, किंतु कैसे खुद श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ में कृष्ण नाम को अपराधिक समझकर, गुरु को भी अपराधिक तत्व समझकर, कृष्ण का परिकर समझ करके यदि हम लोग चले बहुत सहज सरल रूप में बिना प्रयास के ही शुद्धा भक्ति हृदय में आविर्भूत हो जाएगी, कृष्ण तत्व अपने आविर्भूत हो जाएगा, विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए बतलाया जस्य देवे पराभक्ति जथा देवी तथा गुरु तस्य तस्याहि अर्थात तथा संतई, भक्ति को स्वतंत्र शक्ति विशिष्ट उनको पर्सनैलिटी समझो, पर्सन समझो, व्यक्तित्व युक्त, वो जिस पर कृपा करना चाहती है उस पर स्वतंत्र होकर के कृपा करती है, जहां कहीं देखती है जम एव एक दूरते न लभ्य। भक्ति देवी हमारी शुद्ध अवस्था देकर के पवित्र हृदय की भावना समझ करके अपने आप हृदय में प्रण करके उसमें आदित होती है। इसलिए कृष्ण तत्व ही सर्वोत्तम तत्व परम दयालु हैं, वो दयालु होकर के इस जगत में कृष्ण प्रेम देने के लिए आए, इसके संबंध में हम लोगों ने बहुत कुछ कहा है। अभी अमल कृष्ण जी कुछ बोलेंगे और जिनको दिल्ली जाना है वो जाएंगे, हम वहां पर 20 तारीख को आएंगे, 20, 21, 22, 23 को रहेंगे, 24 को हम लोग लौटने की चेष्टा करेंगे।